ये आकाशवाणी दिल्ली है। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन का परिचालन बढ़ाने का फैसला किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज भारतीय नगर क्षेत्र को दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ ने संयुक्त विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 का आयोजन नई दिल्ली में कराने की घोषणा की है और मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अगले 24 घंटे के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रियों की सुगमता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने नमो भारत के परिचालन को बढ़ाने का फैसला किया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार कल से न्यू अशोकनगर और मेरठ साउथ के बीच परिचालित कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन के परिचालन को बढ़ा दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत ट्रेन 15 मिनट के बजाय 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। ये सुविधा सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक के यात्रियों को मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा की तैयारी कर ली है। मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली यातायात पुलिस की अपर उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने कहा कि कई जिलाधिकारियों और उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र भी भेजे गए हैं जिनमें इन विशिष्ट मार्गों पर चैनलाइजर लगाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले गड्ढों और अवैध निर्माण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रास्तों पर दिशा निर्देश भी लगाए जाएंगे।
कहीं पर पोर्ट होल्स हैं या कहीं एनक्रोचमेंट है किसी तरीके का, तो वो सिविक एजेंसी से हमने कंसर्न से सबसे बात करी है और उनको हटाने का प्रोसेस भी चालू हो गया। जो मेन रूट से वो ऑलरेडी पूरी तरह से हम क्लियर करवा चुके हैं। बेसिकली यहाँ साइनेजेस प्रॉपर लगाने के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी कर दी है और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो चैनलाइजर्स हैं वो इस तरीके से लगाए जाएंगे कि उनको आगे का भी एक रास्ता पता चल जाएगा।
राजधानी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने आज कांवड़ शिविर आयोजकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान और पुलिस अपर आयुक्त रवि बिश्नोई की अध्यक्षता में सभी स्थानीय थानाध्यक्ष और सहायक पुलिस आयुक्त मौजूद थे। इस दौरान पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बैठक में आयोजकों को सरकार और दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कांवड़ शिविरों में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।
कांवड़ कैंप में जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का खास ध्यान रखेंगे ताकि कोई आग ना लगे। जो जल के लिए स्टैंड लगाएंगे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होने चाहिए और सबके पास साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। आस पास जो टॉयलेट बनाएंगे थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे। इस टाइप की सब गाइडेंस के अलावा ब्रीफ करा गया है। ट्रैफिक रेगुलेशन का खास ध्यान रखेंगे कि ट्रैफिक को कोई कंजेशन फील ना हो और साथ ही साथ जो कैंप हो तो थोड़ा सा सड़क से पीछे रहे ताकि लोगों को कोई एक्सीडेंट का चांस ना हो, कोई टचिंग का चांस ना हो।
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा और कई विभागों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य तेज बारिश के कारण हुए जलभराव की समस्या का पता लगाकर उनका तुरंत समाधान करना था। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि दिल्ली वासियों को मॉनसून के मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में दूसरे आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन किया। ये पुस्तकालय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली के अधचिनी गांव में विकसित किया गया है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुस्तकालय एक समय में लगभग 60 छात्रों और 8-8 घंटे की 3 पालियों में कुल 180 छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है।
यह पुस्तकालय विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस पुस्तकालय में प्रत्येक सीट पर मॉड्यूलर टेबल, वाईफाई कनेक्टिविटी, सुरक्षित लॉकर कैबिनेट, समर्पित डिस्प्ले यूनिट, समाचार पत्र और पत्रिका रैक मौजूद है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में अध्ययन करने आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय विद्यार्थियों को निजी वाणिज्यिक संस्थाओं के शोषण से भी बचाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने में 2 और आरंभ पुस्तकालय खोले जाएंगे।
पहली लाइब्रेरी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में इनॉग्रेट की थी। आज उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ये आज दूसरी आरंभ लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और उसके बाद दो और लाइब्रेरी जो बन रही है उनको भी हम शुरुआत करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, उन्हें एक बहुत अच्छा एटमोसफियर मिले पढ़ने के लिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नई नीतियों, पहल और विचारों के साथ निरंतर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय से राजधानी के बच्चों के उज्जवल भविष्य का आरंभ हो गया है।
दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय जो जुड़ा है। रोज नई पॉलिसी, रोज नए काम, इनोवेटिव आइडियाज, बेहतर विजन। दिल्ली के लोगों को एक बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिस तरीके से सरकार कदम दर कदम चल रही है, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, सुंदर भविष्य की आरंभ पुस्तकालय करेंगे।
आरंभ पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहेगा जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। यह पुस्तकालय पर्याप्त रोशनी से सुसज्जित है और इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, एक कैफेटेरिया, एक बाहरी बैठक क्षेत्र और एक ओपन एयर जिम भी शामिल है। इस पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए विद्यार्थी को ₹1,000 प्रति माह की राशि चुकानी होगी। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज भारतीय नगर क्षेत्र को दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया। ये घोषणा NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने भारतीय नगर में आयोजित एक समारोह में की। एक स्वच्छ और हरित कल के लिए एक साथ के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई अनुपम कॉलोनी पहल उन आवासीय क्षेत्रों को मान्यता देती है जो नवीन स्वच्छता की पहल के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष ने कहा कि अनुपम कॉलोनी मॉडल ये दर्शाता है कि कैसे सामूहिक नागरिक भागीदारी जब मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित हो तब ये शहरी स्वच्छता और स्थिरता में ठोस सुधार ला सकती है। इस दौरान NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पिछली बार इस क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हुई थी और पानी घरों में भी घुस गया था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में NDMC ने जलभराव को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए थे।
हमने 200 फुट डीप तक जिसमें प्रॉपर प्लानिंग करके एक्सपर्ट को लेकर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमने 3 पिट बनाए हैं जहां पानी भरता था, अब पानी ना भर के वो सीधा जमीन के अंदर जा रहा है और जमीन का वाटर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, हमने जहां पानी स्टिल हो जाता है थोड़ा लो लाइंग एरिया के लिए हमने पंप का अरेंजमेंट किया, उसको कनेक्ट किया, यहां एक पंप लगाया, वाटर जहां इकट्ठा होगा पंप उसको पिक करके बाहर डालेगा।
दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया और इसके प्रमुख संचालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से मादक पदार्थ जब्त किया गया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ रूपये है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए आगे की जांच जारी है और दिल्ली तथा NCR क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संयुक्त विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने आज इसकी घोषणा की। 2026-27 सत्र के कैलेंडर की घोषणा करते हुए महासंघ ने कहा कि इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में जूनियर विश्व कप का आयोजन करने वाला नई दिल्ली अगले साल तीनों वर्ग में प्रतिष्ठित विश्व कप चरण की मेजबानी करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, वो शक्ति होते हैं जो व्यक्ति को विचार, समाज को संस्कार और राष्ट्र को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा उन युग द्रष्टाओं को कृतज्ञता से स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने राष्ट्र ही धर्म है की भावना को जीवन का मूल मंत्र बनाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय विश्वविद्यालयों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा के समृद्ध केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुके थे। इन संस्थानों को ज्ञान का विशाल गढ़ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि इन केंद्रों के पुस्तकालय ज्ञान के विशाल महासागर हैं, जिनमें हजारों पांडुलिपियां हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी सभा को संबोधित किया। दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 1911 से 1946 के स्वाधीनता पूर्व भारत की संसदीय प्रणालियों और स्वाधीनता संग्राम में भारतीय प्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित विद्वानों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने वक्तव्य में भारत की संवैधानिक विरासत से पुनः जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक सदी पहले भी हमारे विधायी प्रतिनिधि लोकतंत्र, नागरिक स्वाधीनता और सदन की मर्यादा के प्रतीक थे। इस संगोष्ठी में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, रामभाव महालगी प्रबोधनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय समेत कई विद्वान शामिल हुए। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में अगले 24 घंटे के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूसा और पालम में भी पिछले 24 घंटे में तेज वर्षा हुई है।
दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिसके कारण शहर के आईटीओ, धौला कुआं, नेहरू प्लेस, नांगलोई और मुंडका सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति रही तथा यातायात भी प्रभावित रहा। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने मिंटो ब्रिज और तमाम जगहों पर जलभराव को लेकर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों ने इस बार देखा है कि इतनी भारी बारिश के बावजूद उस तरह का जलभराव नहीं हुआ जो हर बारिश में देखा जाता था।
दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहां लीगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारामूला जैसी एरिया था स्मूथ चला। जहाँ जहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग्स है उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी।
वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने रेलवे ब्रिज पॉइंट के नीचे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर नालियों की सफाई का कार्य किया। इस दौरान NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल मौके पर मौजूद रहे। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि NDMC के अंदर गत आने वाले क्षेत्र में आज उन्हें जलभराव की कोई शिकायत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर दिल्ली नगर निगम सदन में हुए हंगामे पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यह हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग 10 वर्ष तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे लेकिन काम कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने इन्हें नगर निगम में भी नकार दिया है और ये पार्टी अब हताश हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया कि निगम का सदन चलेगा और दिल्ली का विकास भी होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा यात्रियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। यात्रियों से हवाई अड्डे तक पहुंचने और संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो और परिवहन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने को कहा गया है। दिशा निर्देश में बताया गया है कि नवीनतम उड़ानों की जानकारी के लिए यात्री अपने संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन अभी सामान्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के परिचालन को बढ़ाने का फैसला किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज भारतीय नगर क्षेत्र को दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने संयुक्त विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 का आयोजन नई दिल्ली में कराने की घोषणा की है और मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में अगले 24 घंटे के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।